सन्यवादी पाश्चात्येशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम पौरा और गोप्यस्तपः किमचरन्मः याहेतावनुपश्यन्ति नरलोकमहोत्सवौ भगवान श्री कृष्ण अपने भाई श्री बलराम एवं गोपों के साथ मथुरा के राजपथ पर चल रहे हैं और स्त्रियां उनका दर्शन कर परमानंद में मग्न हो रही हैं तथा अन्य मथुरावासी भी भगवान के दर्शन से अतिशय सुखी हो रहे हैं तथा ब्राह्मण गण आशीर्वाद दे रहे हैं। मथुरा की नारियां विशेष करके श्री गोपियों के विषय में बातचीत करते ऊचु पौरा अहो गोप्यस्तप किमचरन महा या हेतावनुपश्यन्ति नरलोक महोत्सव एतौ नरलोक महोत्सव ये अर्थात कृष्ण और बलराम समस्त मनुष्य समाज के महाउत्सव उत्सव का अर्थ है आनंद महाउत्सव महोत्सव एतौ महोत्सव नरलोक जितने भी मनुष्य हैं इस जगत में सबके लिए कृष्ण बलराम महोत्सव नरलोक महोत्सव श्री कृष्ण और बलराम मूर्तिमान उत्सव है। उत्सव का अर्थ है सुख। तो ऐसे मनुष्यों के महान सुख स्वरूप है कृष्ण और बलराम को श्री गोपियां अनुपश्यन्ति निरंतर देखती हैं। गोपियों ने कौन सा तप किया था? तपह आचरण। तपह का अर्थ है शुभ कर्म, दान जप तपस्या। कौन सा ऐसा पुण्य किया था कि भगवान कृष्ण का दर्शन करती हैं, कृष्ण और बलराम का दर्शन करती हैं? भगवान का दर्शन करना, उनसे भेंट करना, यही सबसे महान फल है सब प्रकार के सुकृतों का। जो व्यक्ति भगवान से प्रेम करता है और उसे ऐसा सौभाग्य मिले कि भगवान से उसकी भेंट हो और उनको भर आंखों देखे, तो ऐसा माना जाएगा कि उसने कई जन्मों में बहुत बड़ा तप किया था, सुकृत किया था, वेदों का अध्ययन किया था, प्राणियों का दुख हरण किया था, इसने दान दिया था, इसने ब्रह्मचर्य का पालन किया था, पितरों को तृप्त किया था, देवताओं का हित किया था, देवताओं की पूजा किया था। ये सब बातें उसी समय पता चलती हैं। फल से कारण का अनुमान किया जाता है। कृष्ण बलराम का दर्शन ही सब प्रकार के सुकृतों का महाफल है। इसीलिए मथुरा की स्त्रियां कहती हैं, अरे सखियों, गोपियों ने कौन सा तप किया था जिससे श्री कृष्ण बलराम को अनुपस्यंती निरंतर देखती रहती है। इस प्रकार से मथुरा की स्त्रियां और पुरुष भी आपस में कृष्ण बलराम के महातेज को, सौंदर्य को देखकर परस्पर बातें कर रहे थे और बहुत बड़ी भीड़ चल रही थी, साथ साथ में समुदाय चल रहा। उसी समय भगवान ने एक लीला किया, उसको हम यहां प्रारंभ करते हैं। रजकम कंसिदायातम रंग कारम गदाग्रज दृष्ट्वा या चतवा सांसी भवतान्यप्युत्तमानि च। कंचित रजकम, कोई रजक जो रंगकार का काम करता था, वह बहुत ही उत्तम श्रेणी के वस्त्र ले जा रहा था, और भी उसके साथ कई लोग थे। वो समस्त रजक का सरदार, रजक का अर्थ होता है वस्त्र धोने वाला, इसको धोबी कहते हैं, लेकिन वह सामान्य धोबी नहीं था, वह रंगकार था। रंगकार, रंगकार थे कलर, कपड़ों को रंगता था रजक। सभी समझते होंगे हिंदी में रजक का, और कपड़ा रंगता था किसका? कंस के परिवार का या कंस के मिनिस्टरों का राजकीय वस्त्र धोता था और रंगता था। उसका खास कोई परिचय नहीं दे रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, कहते हैं कंचित रजकम आयांतम, कोई रजक आ रहा था। कंचित का अर्थ है कोई, शायद सुखदेव गोस्वामी उसका नाम नहीं लेना चाहते हैं, बहुत बुरा व्यक्ति। लोग कहते हैं कि अरे उतना बुरा आदमी है, उसका नाम मत लो, तो शायद सुखदेव गोस्वामी भी उसका नाम नहीं ले, क्योंकि भगवान की याचना को वह बुरा नहीं किया, दुर्वचन बोला, इसलिए उसका नाम नहीं रखे। कंचित रजकम आयांतम आ रहा था, रंग कारण वह वस्त्रों को रंगता था। दृष्ट्वा उसको देखकर गदाग्रज अयाचत, गद के अग्रज याचना किए। वसुदेव जी के एक पुत्र का नाम है गर्द, वो भगवान कृष्ण से छोटा था, इसलिए कृष्ण को गदाग्रज कहते हैं, गर्द का अग्रज। कृष्णाग्रज तो बलराम जी थे, कृष्ण से भी पहले जन्म लिए थे, और कृष्ण जन्म लिए थे गर्द से पहले, इसलिए गदाग्रज। गद के अग्रज श्री कृष्ण उसे रजक को देखकर अति उत्तमानी भवतानी वासांसी अयाचक, वासांसी अयाचक वस्त्र मांगे, कैसे वस्त्र, उत्तमानि, भौतानि और च। उत्तम का अर्थ है क्वालिटी की दृष्टि से बहुत उत्तम, फाइन वस्त्र, मतलब वो निर्माण ही उनका हुआ था बहुत उत्तम ढंग से, बहुत अच्छे सूत्र लगाए गए थे, अच्छे बुनकरों के द्वारा बुने गए थे, तो उत्तम। चौकार थे बहुत, रंग भी फर्स्ट क्लास का था, वे रंगे गए थे बहुत अच्छे। और धौतानी, धौतानी का अर्थ है बिल्कुल धोए हुए, नए वस्त्र भी धोए जाते हैं, धोए हुए थे और आयरन किए हुए, बहुत अच्छे थे वस्त्र, देख करके भगवान की इच्छा हो गई वस्त्रों और अयाचक। श्री कृष्ण ने मांगा वस्त्र, इस तरह से मांगा सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, देहिया वयो समुचिता नंग वांसी चाहत भविष्यति परम श्रेयो दातुस्ते नात्र संशय। हे अंग, हे प्रिय रजक, आवयो वासांसी देही, हम दोनों को वस्त्र दो। यद्यपि भगवान के साथ अन्य बहुत से गोप चल रहे थे, फिर भी सबके लिए मांगने में संकोच हुआ, तो कहते हैं हम दोनों को वस्त्र दो, आवयो वासांसी देही, केवल दो के लिए ही मांगे। और अंग संबोधन की, अंग का अर्थ होता है प्रिय, ऐसा अंग्रेजी में तो किसी को भी माय डियर फलाना कहते हैं, ये वो माय डियर, माय डियर। तो अंग्रेजी संस्कृत में अंग शब्द कहा जाता, अंग मतलब हमारे स्वरूप, हमारे प्रिय, हे हमारे प्रिय रजत, अवयो हो वसंस वस्त्राणी देह, समुचितानि हमारे लायक जो है। समुचितानी का अर्थ है कि हम बहुत वस्त्र नहीं मांग रहे हैं, हम केवल एक सेट वस्त्र चाहिए। और वस्त्रों में भगवान धोती और दुपट्टा मांग रहे थे, बस इतना समुचित का ही अर्थ, समुचितानी वासांसी। तो आप सोच सकते हैं भगवान के लिए समुचित वस्त्र क्या माना जाएगा, अवय समुचितानी ही वासांसी दे, उनको उचित वस्त्र दो। यह उचित से तात्पर्य है कि तुमको जो उचित लगे, हमको हमारे लायक धोती दुपट्टा या और भी सब दो। उचितानी शब्द से भगवान मानो अपने मन का हठ दूर करते हैं, बोल रहे हैं कि हम हठ नहीं कर रहे हैं और हम बहुत कीमती वस्त्र भी नहीं मांग रहे हैं, हम उचित वस्त्र मांग रहे हैं। लेकिन यदि आप ये समझते हैं कि हमको वस्त्र की आवश्यकता है इस शहर में, शहर के लायक, नगर के लायक हमारा वस्त्र नहीं है, तो आप ऐसा समझ करके हम दोनों को वस्त्र दीजिए। अर्हता, क्योंकि हम योग्य हैं, भगवान अपने मुख से कहते हैं कि हम वस्त्र पहनने के योग्य हैं, या हमें आवश्यकता है, आप दीजिए। भविष्यति परम श्रेय दातुस्ते नात्र संशय, ते दातु यदि आप दे देते हैं तो आप दाता का तत्काल ही बहुत बड़ा श्रेय होगा, कल्याण होगा। हमारा स्वभाव है कि हमको जो देता है उसका बहुत बड़ा कल्याण करता है, ये भगवान कह रहे हैं। दातुस्ते नात्र संशय, इसका अर्थ यह है कि भगवान उसको देने के लिए उकसा रहे हैं कि यदि आप हमको देंगे तो वैसे हमारे पास तो कोई पैसा नहीं है, परंतु पैसा से कोटि गुना अधिक मैं आपका उपकार करूंगा यदि वस्त्र दे दिए। न अत्र संशय, इसमें कोई संशय नहीं, आप संशय मत करो कि झूठ बोलकर के वस्त्र ले लिया और कुछ दिया नहीं। भगवान अभी भगवान है, कितना शालीन भाषा बोलते हैं। दातु होते देने वाले आपका परम श्रेयम भविष्य, परम श्रेय भविष्य, बहुत श्रेय क्या क्या श्रेय है इस संसार में, जैसे धन प्राप्त होना या आयु, विद्या, यश और दूसरे जन्म में स्वर्ग लोक की प्राप्ति या भगवान के धाम की प्राप्ति, ये श्रेय कहे जाते हैं। प्रत्येक मनुष्य श्रेय चाहता है। भगवान अपने श्रीमुख से कह रहे हैं कि यदि आप वस्त्र मुझे देंगे तो आपका परम श्रेय होगा, तो देने में आपको घाटा नहीं है, ये कहने का आशय है, बहुत बड़ा लाभ है, इस तरह से बोल रहे हैं। और शायद उसने कुछ ऐसा संशय किया होगा तो भगवान कहते हैं अत्र न संशय, मैं जो बात कह रहा हूं कि आपका बहुत बड़ा हित होगा इसमें संशय नहीं। इसका आचार्य लोग फिर विपरीत अर्थ करते हैं, ते अदातु, यदि आप नहीं वस्त्र देते हो तो तुम्हारा श्रेय न भविष्यति, तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। नौ को वहां बैठा कर पाते हैं और दातु के पहले अ लगा करके बोलते हैं, संस्कृत के व्याकरण के अनुसार उसमें लग सकता है। भविष्यति परम श्रेयो अदातुस्ते न अत्र संशय, अथवा इसका यह अर्थ है कि तुम नहीं भी दोगे तो तुम्हारा परम हित होगा, इसमें संशय नहीं है। तो भगवान मारेंगे तो बैकुंठ जाएगा, कहने का आशय ये है तुम नहीं दोगे तो तुम्हारा कल्याण नहीं है। पर हम लोगों को मूल अर्थ लेकर के ही चलना है कि यदि आप हमको वस्त्र देंगे तो आपका बहुत बड़ा हित होगा, अत्र न संशय, इसमें कोई संशय नहीं। और भगवान इसके आर्डर नहीं किए, आज्ञा नहीं दिए। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं स याचित भगवता परिपूर्ण सर्वतः, भगवान सर्वतः परिपूर्ण है, सब प्रकार से किसी भी दृष्टि से देखिए तो भगवान पूर्ण है, धन में, धन से, बल से, जस से, कीर्ति से, सबसे पूर्ण है। समग्र सौभाग्य की लक्ष्मी, समस्त धन की अधिष्ठात्री देवी जब उनके चरणों की दासी है, सेवा करती है, तब तो कहना ही क्या, तो सब तरह से परिपूर्ण है। पर ऐसे परिपूर्ण छह ऐश्वर्यों से पूर्ण भगवान याचना किए, उस रजक से, धोबी से भगवान मांगे हाथ जोड़कर, जैसे लगा कोई बेचारा लड़का गांव से आया है, मांग रहा है कि भाई वस्त्र दे दीजिए और आपका बहुत बड़ा हित होगा, तो कम से कम उस दुष्ट को पूछना चाहिए था कि क्या हित करोगे, क्या दान दोगे, है ना। तो पूछा होता तो भगवान और स्पष्ट किए होते कि ये दूंगा वो दूंगा, लेकिन वो कुछ पूछा नहीं। स याचित भगवता परिपूर्ण सर्वतः, अब सुखदेव गोस्वामी उस धोबी को गाली देना चालू करते, कथा कह रहे हैं श्री भगवान ने मांगा जो सब तरह से परिपूर्ण है, परंतु वह वस्त्र दिया नहीं, उल्टे डांटने लगा, फटकार करने लगा। कभी देखे हो ऐसा मुख, ऐसा वस्त्र कभी देखे हो, मांगने में शर्म नहीं लगती। उसका काल निकट आ गया, नहीं देना था नहीं देता, कह देता कि बेटा ये वस्त्र राजा का है, मैं उसका सेवक हूं, नहीं दे सकता, ये व्यवस्था है। तब भगवान कुछ और बात कहते कि मैं देख लूंगा तुम्हारे राजा को, दे दो। भगवान कुछ भी कह सकते थे लेकिन उसने विचार ही नहीं किया, वास्तव में मरने का समय उसका आ गया। जब किसी व्यक्ति के मरने का समय आता है तो वो बहुत बुरी बुरी बातें बोलने लगता है, बकने लगता है, समझना चाहिए कि अब ये मरने वाला है। हिरण्यकश्यप के सामने जब प्रहलाद महाराज कह रहे थे कि हमारा बल आपका बल, भगवान है वही जगत की सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं, और भगवान किसी के शत्रु नहीं है, वास्तव में शत्रु है अपना न जीता हुआ मन, अपनी इंद्रियां शत्रु है, तो आप अपने असली शत्रुओं को जीतिए और भगवान से प्रेम कीजिए, क्यों भगवान को अपना बैरी समझते हैं। ये सुनकर हिरण्यकश्यप कहता है समझ कर तुम्हारे मरने का समय आया, क्योंकि तुम्हारे मुख से बहुत उत्पटांग बात निकल रही है। हिरण्य कश्यपु के लिए बहुत उत्पटांग बात थी कि कोई विष्णु की महिमा उसके सामने कहे। स्पष्ट कहा कि तुम मरना चाहते हो, लेकिन वास्तव में मरने का समय हिरण्य कश्यपु का आ गया था। वह असली में उत्पटांग बोल रहा था, और बस उसके 10 मिनट के बाद ही भगवान खंभे से प्रकट हुए और उसको मार दिया। सातवें स्कंद भागवत में लिखी गई थी बात। तो उस रजक के मुख से यह बुरी बात निकली है। कहता है ईदृशान ने वो वासन से नित्यम गिरी बने चरा। अरे नित्य वन और पर्वत में रहने वाले ऐसा वस्त्र कभी पहने हो क्या? ऐसा कहते क्यों? ऐसा कहा सुखदेव गोस्वामी कहते हैं साक्षेपम ऋषि प्राह भीतो राज्य सुदुर्मत। भगवान पर आक्षेप करता हुआ बोला। वो सुदुर्मद था, उसका मद उसका अभिमान बहुत बढ़ गया था, दूषित आदमी था, दुष्ट। तो मद बढ़ गया था, अभिमान में था, क्योंकि राज्य भृत्य वो कंस का पर्सनल भृत्य था। कंस का खास अपना जो कपड़ा होता था उसको रंगना आयरन करना काम करता था, तो बहुत घमंड में था। शायद कंस इसको बहुत हाई स्केल का सैलरी देता होगा, जो भी है इस कारण से उसका मद बहुत बढ़ा हुआ। राजा का पर्सनल सेवक था और इस तरह से उसका मत पहले से ही बढ़ा था, बुरा व्यक्ति था। तो भगवान ने याचना किया, फिर भी वो नहीं दिया और आक्षेप करते हुए बोला। मान लीजिए कोई बच्चा मांग रहा है, वस्त्र मांगे चाहे कुछ भी मांगे, अगर नहीं देना है तो कह दे नहीं मैं दे नहीं पाऊंगा। ज्यादातर तो ये करना चाहिए दे देना चाहिए, ठीक है बेचारा लड़का है, जबकि लाखों लोग उसको देख रहे हैं, इतना तेजस्वी लड़का साक्षात ईश्वर है और सब उसको दे रहे हैं, न्यौछार कर रहे हैं, और वह अपने मुख से मांग दिया तो मनुष्य तो समझे कि हमारा सौभाग्य है कि यह लड़का मांग रहा है, लेकिन उल्टे साक्षेप आक्षेप किया। पहला आक्षेप था गिरी बने चरा, गिरौ बने चरा, तुम लोग कहां रहते हो, कहां घर है और घर कैसा है ये विचार करते हो? आज ही बड़ा बड़ा महल देख रहे हो तो अच्छा वस्त्र पहनने की इच्छा हो गई ना? वन और पहाड़ में रहते हो ना? तो वन में और पहाड़ में रहने वाला क्या ऐसा वस्त्र पहनेगा, उसे कहने का आशय। वो शहर में आते ही राजा के धन को लूटने की इच्छा हो गई, बदमाश कहीं तुम लोगों को बोलने में शर्म नहीं आ रही, कैसे मांग दिया तुम? निश्चित है उसके मरने का समय आ गया। भगवान से इस प्रकार बोलना, भगवान छोड़ दीजिए कोई भी बच्चा हो 10-11 वर्ष का, और इस तरह से वस्त्र मांग दिया तो गाली देने का पात्र है? कभी नहीं। लेकिन यह दुर्मुख इस तरह से बोलने लगे, ईदृशानी एवं बासांस नित्यम गृह बने चरा परिधत्त। अरे वन में रहने वाले, अरे पर्वत में रहने वाले, गाय चराने वाले, पशु चराने वाले, क्या इस प्रकार के वस्त्र तुम कभी पहने हो, देखे हो? पहनने की बात तो दूर रही, कभी देखा था ऐसा वस्त्र? मांग रहे हो वस्त्र दे दो, वस्त्र दे। उद्वृत्ता राजद्रवण भिक्षत। अरे उद्वृत्त, उद्वृत्त का अर्थ है जिसका वृत्त, जिसका आचरण मर्यादा से ऊपर, तुम बिल्कुल मर्यादा से बाहर बोल रहे हो। भगवान को कहता है बोलने से पहले मांगने से पहले अधिकार देखना चाहिए कि मैं इसके योग्य हूं कि नहीं। फर्स्ट डिजायर देन डिजायर, अंग्रेजी में कहते बोला होगा, अपना पोजीशन देखो किस तरह से वस्त्र पहन कर आए हो, कैसे रहे हो और आज क्या चाहते हो। तो अपनी योग्यता देखो, अपना अधिकार देखो, इस तरह से कभी साहस मत करना मथुरा में। और राज द्रव्याणी अभिप्सत, मथुरा में आकर को कोई साधारण वस्त्र नहीं, किसी से नहीं, अब राज द्रव्य, सरकारी वस्त्र, राजा के वस्त्र को चाहते हो, द्रव्य को चाहते हो, नहीं पता है ये वस्त्र किसके हैं? दिखने में तो तुमको बहुत सुंदर लग रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन है किसके, कभी विचार किया? राज दरबार में अभी सत्र है, अब तुम राजा के कोष को, राजा के धन को लूटना चाहते हो, राजा का वस्त्र लेना चाहते हो। वास्तविक बात थी कि भगवान लेना चाहते थे राजा के पद को, धन को, घर को, सब कुछ को। तो उसके मुख से सरस्वती जी ही बोल रही, राज द्रव्याणि अभिप्सथ, राज द्रव्यों को लेना चाहते हो। जातासु आसु जात, शीघ्र ही मथुरा से बाहर हो जाओ। यदि जीना चाहते हो, जातासु बालिशा मयम प्रार्थम यदि जी जी विषा, यदि जीने की लालसा है तब तो मथुरा से बाहर चले जाओ, अगर मरना चाहते हो तो यही कही रहो। और ये संवाद, ये खबर तो अब राजा कंस के पास जाएगा कि वृंदावन से एक लड़का आया करके और आपका वस्त्र मांग रहा है। तो सुनते ही कंस क्या करेगा पता लग जाएगा। तो यदि जीजी विषा, यदि जीने की लालसा है तब तो या जात और भी आशु शीघ्र, जितना जल्दी हो मथुरा से निकल कर भाग जाओ। तो जब तक राजा कंस के कान में ये खबर नहीं जाती है कि वृंदावनवासी एक लड़का आकर के मांग रहा था वस्त्र को, इसके पहले भाग जाओ, कहीं पहाड़ में छिप जाओ, वन में चले जाओ, नहीं तो कंस को पता लग गया तुम्हारा मरण निश्चित। अब इससे ज्यादा कर्कश कोई क्या बोल सकता था, रजक इस तरह से बोला। मयूं प्रार्थ्यम, मां एवं प्रार्थ्यम, एक बार मैं तुमको क्षमा कर देता हूं, उचित तो यही था कि अभी मैं तुमको मार दूं, लेकिन मैं एक दयालु व्यक्ति हूं, तुमको क्षमा करता हूं एक बार, अब कभी ऐसा मत मांगना। मां एवं प्रार्थ्यम, ऐसी प्रार्थना कभी मत करना, तो मैं हूं कि तुमको नहीं मार रहा। और दूसरे जगह अगर मांगोगे तो तुम्हारी बहुत भर्त्सना होगी और तुम्हारी जान मार दी जाएगी, और जीना चाहते हो तो मथुरा से जथा शीघ्र बाहर हो जाओ। अपने अनुगामी गोपों के सामने और श्री बलराम जी के सामने धोबी ने भगवान को इस प्रकार से कहा। जानते हो बदनंती घनंती लुंपंती दृप्तम राजकुलानि वै, राज परिवार के लोग हैं, उन लोगों को बांध लेते हैं। किनको? दृप्त, जो लुटेरे होते हैं, बदमाश होते हैं तुम्हारे जैसे, उसको राजा लोग बधनंती कारागृह में डाल देते हैं। अभी कंस के पुलिस पहुंचेंगे और तुमको डाल देंगे कारागृह में, इसलिए जितना जल्दी हो भाग जाओ। बधनंति केवल न तो बधनंति अपितु घनंति, वो बध कर देते हैं, फांसी पर चढ़ा देते हैं राजा लोग, इसलिए बाहर चले जाओ। बधनंति घनंति और लूमपंती, तुम्हारे पास जो भी है वो भी लूट लेते हैं राजा, तुम्हारा घर द्वार सब कुछ ले लेंगे और प्राण भी ले लेंगे, वो पता चल गया। ऐसे राजा लोग होते हैं, और उसमें भी हमारे राजा कंस का तो कहना ही नहीं। तो जो ही संवाद पाएंगे तभी तुम्हारी शोध करेंगे कहां गए, कहां है, और पकड़ करके जान से मार डाले। इसलिए जितना शीघ्र हो मथुरा से चले जाओ।
देर है घंटी बजा,
जितना जल्दी मथुरा से बाहर हो जाओ। इस प्रकार से और भी बात बोला जिसको सुखदेव गोस्वामी यहां कहना नहीं चाहते। इसको कहना नहीं चाहते हैं, बुरी बात बोला, इसलिए कथा के समय सुखदेव गोस्वामी केवल एवं शब्द लगा रहे, एवं बस इस प्रकार। इस प्रकार से और बहुत बात बोला, एवं विकथ मानस्य कुपितो देवकी सुता। तो देवकी सुत कुपित हो गए। भगवान में वास्तव में क्रोध नहीं आ सकता है, क्रोध का एक नाटक किए, अथवा एक बालक है और अन्य समाज में उनकी बेइज्जती हुई तो क्रोध आ ही जाएगा। तो क्रोध आया और उन्होंने तुरंत ही हाथ चला दिया उसके गर्दन मस्तक ऐसे गर्दन, और ये छुरे जैसा काम किया, छुरे की धार जैसा भगवान का अंग, उनका अंग कुछ भी काम कर सकता है, और उसका मस्तक बहुत सफाई के साथ कट करके जमीन पर गिर गया। अब तो वस्त्र मांगने और लेने की बात ही नहीं रह गई, वह सबसे बड़ा जो रजक था उसका मस्तक कट गया। एवं विकथ मानस से कुपितो देवकी सुतः रजकस्य कराग्रहण सिरह काया दपाते, सिरह काया अपाते, काया से शरीर से सिर को अलग कर दिया, सीधा अलग करते, लगता था कि जैसे छुरी से काटा गया था। अथवा कुछ टीकाकारों का कहना है कि भगवान ने इतना जोर से तमाचा मारा कि सिर टूट गया गिर गया, जैसा कहते हैं। कराग्र शब्द का प्रयोग है, कराग्र का अर्थ है अंगुली, हाथ, तल, करतल, इसको कराग्र कहते हैं, पूरा कर है, इसके अग्रभाज कराग्रह सिर कायत अपातय, अपातय पातित करके गिरा दिया, और जब उसको मारा जोर से भगवान ने तमाचा, चाहे अंगुली से मारा और मस्तक कट कर गिर गया, तब तस्या जीर्ण सर्वे वास कोषण विसृत जीवय दुद्रभु सर्वतो मार्गम वासांसी जग है चुना। तो उसके जितने भी अनुजीवी थे, उस धोबी के सेवक और जो थे सब कपड़ा लेकर जा रहे थे, और बहुत से गधे भी थे, उन पर लादा गया था, तो गधे भी भागे वहीं ऊपर गिर पड़ी पोटली, और जो भी थे सब छोड़ छाड़ पटक पटक करके जहां तहां भाग गए, वो लोग समझे कि सबका मस्तक काटेगा। सब भाग चले। सर्वतो दिशम का अर्थ जिसको जिधर अब मौका मिला उधर भाग गया, क्योंकि सबने सोचा कि एक और भागेगा तब तो पकड़ कर मार देगा सबको, तो बहुत भारी आश्चर्य हो गया ना कि 10-11 बरस का लड़का और उसके हाथ में इतनी शक्ति कि मार दिया और मस्तक कट गया, फिर तो बहुत आसानी से किसी को भी मारेगा और उसका मस्तक कट जाएगा, तो सब भार चलेगा। कोषण विसर्जय वस्त्र कोष जो थे जिनको पुटक कहते हैं संस्कृत, पुटक का अर्थ है पोटली गठरी, सब पटक पटक कर भाग, वस्त्र पटक कर भागे उसमें कई भाव है। एक टीकाकार कहते हैं उन्होंने सोचा कि वस्त्र लेकर हम भागेंगे तो भाग नहीं पाएंगे, भारी भारी वस्त्र थे पकड़ लेगा, तो इसलिए पटक दी, अथवा उन्होंने सोचा कि इसको तो वस्त्र की जरूरत है, वस्त्र पटक देगा तो वस्त्र ले लेगा, हमको छोड़ देगा, हमारी याद नहीं करेगा। तो इसलिए सब लोग वस्त्र पटक करके भाग गए, और गधे भी भाग गए, और इतना जोर से गधे उचके कि पोटली उन पर से भी गिर पड़ी, कपड़ा एक भी लेकर नहीं भागे, सब कपड़ा वहीं पथ पर ही बिखर गया इधर उधर। भगवान ने रजक का वध क्यों किया, इस पर एक भागवत के टीकाकार कहते हैं, वो कुछ उत्प्रेक्षा करते हैं, रजक हीन कर दिया कंस को, मतलब अराजकता फैला दिया भगवान ने, ये मानो वो अराजकता फैलाया पहले पहल, रजक हीन कर दिया। भगवान ने इसके द्वारा सूचित किया कि अब मथुरा का राजा मारा जाएगा। कई उत्प्रेक्षा किए हैं तो भगवान इस तरह से मारे, और जो वस्त्र वहां गिर गए सब, तब जगृहे अच्युत, अच्युत उन सारे वस्त्रों को इकट्ठा करवाया श्री कृष्ण, एक सारा इकट्ठा करे, इकट्ठा करके भगवान अपने हाथ से खोले पोटली सब, उसको आयरन करके तह का तह सजाया गया था वस्त्र। तो सबसे पहले भगवान लिए वस्त्र, ये प्रश्न होता है कि उन्होंने पहले भगवान जी को क्यों नहीं दिया, चाहे और गुप्त थे उनको देना चाहिए, भगवान सबसे पहले क्यों नहीं। हरिश्वरी जी भागवत के बहुत बड़े टीकाकार हमें कहते हैं कि भगवान ने सोचा कि पहले अगर मैं स्वीकार करूंगा तो सारा वस्त्र प्रसाद हो जाएगा, इसलिए पहले मुझे स्वीकार करना चाहिए। तो उन्होंने अपने योग्य वस्त्र लिया, अपने योग्य मतलब ये पीताम्बर पहनते हैं, तो पीले रंग के खूब उत्तम कोटि के वस्त्र लिए और ले करके पहनने लगे। वहीं पर भगवान संग्रह नहीं करते हैं, वो ये कभी गमछा तक फालतू नहीं लिए, भले बहुत वस्त्र फैले थे लेकिन भगवान ज्यादा नहीं लिए। वे पीताम्बर लिए दोनों, एक तो धोती, लेकिन धोती बड़ी हो रही थी, और दुपट्टा भी लिए। या हो सकता है मथुरा में वे अब कोट भी पहनना चालू किए होंगे, राजा लोग जैसे पहनते हैं, लेकिन सब बड़े बड़े थे, परंतु अपने अनुसार लिए, पीताम्बर लिए और अपने हाथ से बलराम जी को छांट छांट कर नीलाम्बर दिए। दोनों भाई जब ले लिए वस्त्र, पहन लिए, तब वे अन्य गोपों को कहे कि तुम लोग चुन लो अपने अपने लिए वस्त्र ले लो, तो जिसका जैसा स्वभाव था, जो पसंद थी, जो च्वाइस था, उसके अनुसार वस्त्र सब लिए। बाकी बहुत ज्यादा वस्त्र वहीं पड़े रह गए, भगवान उन सबको नहीं दिए। यह दिखाया गया है कि भगवान लोभी नहीं है, तो जितना आवश्यक है उतना वस्त्र लिया, ऐसा नहीं दूसरा रहता तो अब अपनी अटैची में बक्से में भर भर करके सब ले जा, है ना, कि भगवान ऐसा करने वाले नहीं। छोड़ दे, दूसरे लोग तो हिम्मत नहीं करते होंगे कि राजा का कपड़ा हम लोग छुए, मथुरा के लोग तो डरते होंगे, वहीं पर उसकी लाश पड़ी थी धोबी की और कपड़े सब बिखरे थे, तो वीडियो कैमरा लेकर कुछ लोग आए होंगे, लिए होंगे फोटो न्यूज पेपर में देने के लिए किस तरह से धोबी मरा है, किस तरह से वस्त्र बिखेरे गए हैं, कंस को बताने के लिए। हो सकता है या चित्रकार लोग आए होंगे, बना लिए होंगे चित्र के ऐसे ऐसे वस्त्र बिखरे हैं, और वो तो मथुरा के सवेरे के न्यूज में आए, शाम की घटना है तो रात भर में प्रिंट करके देंगे। यह है भगवान की लीला। तो श्री कृष्ण ने पीताम्बर धारण किया, बलराम जी ने नीलाम्बर, श्री कृष्ण पीला वस्त्र पहनते हैं क्योंकि उनकी प्रिया पीली है, पीत वर्ण की राधा रानी, भाई भी गोरे हैं, तो भगवान को बड़ा पसंद पड़ता है पीत वस्त्र पहनना, और राधा रानी नीला साड़ी पहनती अधिकांश का, उनको बहुत पसंद है अपने प्रियतम के रंग की साड़ी, इसलिए वो पहनती है। और श्री बलराम जी भी नील वस्त्र धारण करते, अपने भाई के प्रेम में कुछ शरीर से और वस्त्र से मेल रहता है, इसलिए वे नील पहनते हैं, उनको नीलाम्बर कहते हैं और कृष्ण को पीताम्बर। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, वसित्वात्म प्रिय वस्त्रे कृष्ण संकर्षण अस्तथा, कृष्ण और संकर्षण एक साथ वस्त्र पहन रहे थे, भगवान ने कहा कि आप ले लीजिए अपने लायक वस्त्र, और दे रहे थे अपने यहां से, तो दोनों एक समय आत्मप्रिय, अपने जो प्रिय वस्त्र हैं, तो वस्त्रों में कई क्वालिटी होती है, कई रंग होते हैं, तो रंग तो कृष्ण ने पीताम्बर पसंद किया और बलराम जी ने नीलाम्बर, लेकिन उसमें भी कोई रेशमी पहनते थे, कोई कुछ पहनते थे, वस्त्र कई किस्म के पहले भी बनते थे, तो जो प्रिय था वो लेकर के पहने। और शेषाणी आदत्त गोप्यभ्यो, और शेष जो वस्त्र थे गोपों को दिए, गोप ले लेकर के सब धारण किए पहने, विसृज भूमि कांचित, और कुछ वस्त्रों को पृथ्वी पर ही छोड़, भूमि विसृज कानिचित, कानिचित मतलब कुछ वस्त्रों को छोड़ दिए, नहीं दिए। यह है देखिए भगवान का उद्धार। किसी भी महान पुरुष को चाहिए कि आवश्यकता से अधिक वस्तु का संग्रह न करे। एक टीकाकार कहते हैं भगवान यहां शिक्षा दे रहे हैं कि जितनी जरूरत हो उतना ही लेना चाहिए। तो भगवान लिए एक सेट कपड़ा, लिए तो केवल धोती दुपट्टा नहीं लिए, लिए आगे चल करके पगड़ी बनाने के लिए, कई तरह से बेल भुट्टा सजाने के लिए। अभी जाएंगे एक दर्जी के पास, एक कथा आ रही है, तो वहां भगवान कहेंगे हमारे हमको सजा दो, हमारे डिजाइन हमारे साइज में कर दो, और मैं इस डिजाइन का पहनूंगा, ये पहनूंगा। बलराम जी भी बता रहे थे हमारा कुर्ता ऐसा होना चाहिए, हमारी टोपी हमारा पगड़ी ऐसा होना चाहिए, ऐसा जा करके सब कहे। और बहुत श्रेष्ठ कलाकार थे, उन्होंने देखो वायक वायक करते वायक करते दर्जी वस्त्र सीने वाला वो सजाएगा। नहीं देने वाले की ये दशा, इस लीला पर विचार कीजिए। छोटी सी लीला है भगवान की, लेकिन भगवान ने ऐसा क्यों किया? भगवान की कोई भी लीला अपने पीछे कुछ उद्देश्य कुछ शिक्षा देती है। सीखना चाहिए भगवान को देना। वास्तव में जो कुछ भी हम लोगों के जीवन में है सब कृष्ण का है। ऐसा नहीं है कि भगवान हम लोगों से मांगते नहीं है, गीता में उन्होंने मांगा है कि हमको दो। जब करो से जदस नासी, जब जो से ददास, जब तपस्या से कौन दे तब पुरुष मदद। कोई मनुष्य ऐसा नहीं है जो रोज खाता नहीं, खाता है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ क्या ज्यादा ऐसे लोग हैं जो पशु की तरह बस भोजन आया विचारते भी नहीं कौन दिया क्या, बस खाना चाहते। पशु को कोई घास डाल दीजिए या कुटी डाल दीजिए, खली कुछ भी, बस खाना जानता है। ये नहीं कि थोड़ा ध्यान करे, हाथ जोड़े, भगवान ने दिया है शरीर और विद्या जाल करके खाए। खाए ठीक है, लेकिन खाने की एक विधि है। पहली विधि यह है कि अपने भोजन को भगवान को अर्पित करना, कम से कम याद भी तो करें कि हे प्रभु तो दिए वस्तु को बिंदु जमे व समर्पय, आपकी वस्तु आपको दे रहा हूं। भगवान की ही वस्तु है, लेकिन भगवान को समर्पित करके दे करके खाना चाहिए। अच्छा, यह अभी बात नहीं है कि भगवान भोजन लेंगे और खा जाएंगे, हम स्टार्विंग करेंगे, हम भूखे तड़पते रहेंगे, ऐसी बात नहीं है। ऐसा कभी किए हैं भगवान? एक भी व्यक्ति को देखी है वो उसको प्रसाद बनाकर लौटा देते, तथापि लोग नहीं खिलाते, भगवान को नहीं देते। एक व्यक्ति को हमसे बहस कर रहा था, वो कह रहा था कि भक्त लोग इसलिए भगवान को भोजन खिलाते हैं कि वे खाते नहीं, अगर खाने लगे तो ये लोग फिर नहीं खिलाएंगे। हमने कहा कि तुम्हारा बेटा, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारी लड़की खाती है तो लोग नहीं खिलाते हो? भगवान अगर प्रकट खाने लगे तो और ज्यादा खिलाएंगे खिलाने वाले। वैसे वो खाते हैं, लेकिन तत्वतः वस्तु भी समाप्त तो कर दे, रोटी भात खीर चटनी चाहे जो कुछ भी, अगर भगवान खत्म कर दे तो उनको और दिया जाएगा। तुम ऐसे कहते हो कि भगवान, कैसे कहते हो भगवान खाने लगेंगे तो कोई नहीं देगा? तो तुम्हारे परिवार में कितने लोग रोज खाते रहते हैं, बच्चा 4-5 बार खाता है, देते हो कि नहीं? तुम्हारे जैसे भक्तजन नहीं होते हैं, शायद तुम ऐसे हो कि भगवान खाने लगे तो नहीं दे, तुम नहीं खाते हो तब भी नहीं दे रहे हो। खाने पर क्या दोगे? तो उसकी दृष्टि से मैं कहा कि तुम्हारी दृष्टि से भगवान नहीं खा रहे हैं तो फिर भी तो तुम नहीं दे रहे हो। तो फिर वही आदमी कहता है जब खाते ही नहीं तो कैसे दे? तो मैं कहा तो खाने पर दोगे ना? तो हाँ, खाने पर तो देंगे। फिर वही सिद्धांत, अपने सिद्धांत का खंडन कर रहे हो। भगवान स्वीकार करते थे। इस जगत में जीव को यही तो सीखना है कि अपना देह, अपना मन, अपनी वाणी, अपना धन सब कुछ कृष्ण को अर्पण करना है, और कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। और वास्तव में वैराग्य इसी को कहते हैं। क्या कोई वैराग्य सीखेगा? वैराग्य की कोई जरूरत ही नहीं है संसार में। वास्तव में वैराग्य तब कहते हैं या त्याग तब कहते हैं जब मनुष्य का धन हो, वस्तु हो, उसको त्याग दे दे। जब हमारा कुछ है ही नहीं तो इसमें त्यागना क्या है? केवल जो अहंता ममता हो गई है कि मेरा है, उस भाव को त्यागना है। वस्तु तो है ही नहीं रियली, अभी मर करके चले जाएंगे, त्यागना क्या कठिन है? हमारा है ही नहीं। प्रत्येक व्यक्ति मान रहा है कि घर मेरा है, धन मेरा है, पत्नी मेरी है, पुत्र मेरा है, देह मैं हूं, ये है वो, जबकि सब कुछ भगवान का। इस संसार में त्याग सीखना है, अहंता और ममता का त्याग। साक्षात भगवान मांगे उस रजक से, लेकिन उसने नहीं दिया, उनके बहुत आक्षेप किया, इस कारण से भगवान ने उसे मार दिया। देखिए भगवान का स्वभाव और भगवान का व्यवहार उनकी लीलाओं में प्रकट होता है। क्या भगवान को आवश्यकता थी कोई? क्या किसी अभाव में थे? वैसे वैसे वस्त्र वो एक सेकंड में अपने संकल्प से पैदा कर सकते हैं, क्योंकि परिपूर्ण है ना सर्वतः। सब प्रकार की योग शक्ति से, सृष्टि शक्ति से भगवान परिपूर्ण है, सब कुछ वो कर सकते हैं। किसी भी व्यक्ति हम देखते हैं कि हमको इसने इतना दिया है तो कोटि गुना लौटाना चाहते हैं। भगवान ऐसे नहीं है कि ले लें, उनको कोई अभाव है। मनुष्यों का स्वभाव होता है, लेते हैं ज्यादा, देते हैं कम। केवल भगवान का नहीं, देवताओं का भी यही स्वभाव है। नहीं, मनुष्यों का ही नहीं, देवताओं का भी यही स्वभाव है। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है कि देवता बिल व फल के बराबर लेते हैं, बेल फल के बराबर इतना, और देते हैं सरसों के बराबर। सरसों समझते हैं? जिसका तेल निकलता है छोटा छोटा, राई। तो बिल और फल के बराबर जब उनको दिया जाएगा तो सरसों के बराबर वो देते हैं। तो ये क्या देना हुआ बताइए? और मनुष्य तो हिमालय की तरह लेंगे तब सरसों के बराबर देते हैं। लेकिन भगवान सरसों के बराबर लेते हैं और हिमालय से भी अधिक देते हैं। ये भगवान का स्वभाव। सुदामा जी ने भगवान को क्या दिया? तीन मुट्ठी चिवड़ा दिया, लेकिन भगवान ने उनको दूसरा द्वारका दे दिया पूरा। भगवान इतने कृतज्ञ होते हैं, आभारी होते हैं भक्त की सेवा से। यद्यपि सुदामा जी की वह अंतिम शक्ति थी कि वे तीन मुट्ठी चिवड़ा दे सके भगवान को, और कुछ था नहीं उनके पास। वर्णन करते हैं जब भगवान के पास वे पहुंचे थे तो उनके पैर में विवाह फटी थी, विवाह कपड़ा कई जगह फट गया था, महीनों से नहीं धोया गया था, और शरीर में नसें उभर आई थी पूरा, भागवत में लिखा गया। और फिर भी भगवान उनको उनके चरण धोने लगे और उस आसन पर बैठाए सुदामा जी को जिस आसन पर वे श्री जी के साथ, रुक्मिणी जी के साथ बैठते। और सुदामा जी को बड़े डर रहे थे कैसे बैठे, लेकिन भगवान ने उनको जबरदस्ती बैठाया और चरण धोए। चरण धोए, खूब स्वागत हुआ, खान पान खूब अच्छा से हुआ, लेकिन जाते समय भगवान कुछ दिए नहीं। क्योंकि भगवान है ये सोच रहे थे कि मैं क्या दूं इनको, इन्होंने जितना मुझे दिया तो मैं सामने क्या दूं। उनको लज्जा आ रही थी वास्तव में, भगवान क्या दूं, इसलिए वो छिप करके दिए। सामने देने में मित्र को संकोच होता है, इसलिए परोक्ष में भगवान देते हैं। तो सुदामा जी रास्ते में सोचते हुए जा रहे थे, कुछ विनोद में भक्तों ने लिखा है कि सुदामा जी सोचते हैं कि खिलाया पिलाया खूब अच्छा से, लेकिन कुछ दिया है कुछ तो, यहाँ तो दिखते हैं कि बेकार मरा आकर के इतना दूर रास्ते अंततः ये चोर है, चोरी करके खाने का स्वभाव था ब्रज में, तो कहाँ से उदार हो सके बताओ राजा बन गया है फिर भी कुछ नहीं किया। लेकिन ये तो विनोद की बात, वास्तव में सुदामा जी का ये भाव है। सुदामा जी सोच रहे, भागवत में लिखा गया है, सुदामा सोच रहे कि हमारे मित्र ने हमको नहीं दिया, वो जानता है कि ये ब्राह्मण ऐश्वर्य पा करके हमारे भक्ति से हीन हो जाएगा, भोग में पड़ जाएगा, इसलिए हमारे धर्म की रक्षा के लिए कृष्ण ने हमें कुछ नहीं दिया। यही सोचते हुए रास्ते में जा रहे थे कि ऐसे मित्र के साथ हमारी मित्रता जन्म जन्म में हो जो हमारा इतना हित का ध्यान रखता है। लेकिन जब पहुंचे अपने घर के पास तो देखे कि उनकी झोपड़ी वहां है ही नहीं, तो पहले तो भ्रम हो गया कि मैं द्वारका लौट आया क्या, फिर से रास्ता भूल करके पुनः द्वारका आ गया। लेकिन ध्यान से देखने लगे तो स्थान वृक्ष शेखा को ऐसे दिखाई दे रहे थे, ये स्थान तो वही है। तो कोई उन्होंने सोचा कि कोई बिल्डर कोई कॉम्प्लेक्स बनाया दूसरा, क्या 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 उजाड़, हमारी झोपड़पट्टी कहाँ गई, झुग्गी कहाँ चली। वो बार बार सोचने लगे। एक गीत है बहुत प्रसिद्ध सूरदास जी का, उसमें वे कहते हैं कि सुदामा मंदिर देख गरी, कहाँ गए हमार राम मड़ैया, कहाँ के भूप उतरी, ये मेरी राम मड़ैया मेरी झोपड़ी कहाँ गई, कहाँ का राजा आकर के बस गया, अरे मैं उधर गया वो भी कुछ नहीं दिया, और इधर घर भी गया हमारी पत्नी को भी कोई ले गया क्या वो तो विनोद में मैं कह रहा हूँ, उधर भी गया कुछ नहीं दिया। तो वास्तव में बहुत सुदामा जी प्रसन्न थे, तब तक उनकी पत्नी रुक्मिणी जी के समान सुंदरी बन करके और अन्य सुंदरी स्त्रियों के साथ आरती सजा करके आने लगी घर से, तो ये तो बिल्कुल नहीं पहचान पाए। लेकिन उनकी पत्नी ने कहा कि आप चकित मत होइए, आपके मित्र ने यह भवन बनाकर दिया है, नगर बनाकर दिया है, विश्वकर्मा जी ने बनाया तुरंत। तो वो कहे कि मैं अपनी पत्नी हूं और इस तरह से ऐसे मेरी सखियां हैं सहेलियां हैं। तो सुदामा जी वहीं पर खड़े खड़े रोने लगे, कहते हैं कि मुझे धन नहीं चाहिए। भागवत में बोले हैं मैं धन नहीं चाहता हूं, मैं वैभव नहीं चाहता हूं, अपने मित्र के साथ मेरी मित्रता जन्म जन्म में हो यही चाहता हूं। इस तरह सुदामा जी भागवत में बोले हैं। और वो कहते हैं कि जैसे बादल रात्रि में वर्षा करते हैं किसानों के सो जाने पर, उसी तरह से मेरा मित्र परोक्ष ने मुझे दिया। प्राय वर्षा रात में होती है, लोग देखते हैं गांव में किसान सोए रहते हैं और सवेरे जगते हैं तो देखते हैं कि उनके खेत में पानी भरा हुआ है, तो बादल रात में देते हैं। तो इस प्रकार श्री कृष्ण परोक्ष ने मुझे दिए, सामने संकोच कर रहे थे देने में, लेकिन बार बार कहते हैं कि हमें उनकी मित्रता चाहिए, सत्य चाहिए जन्म जन्म में। इस प्रकार भगवान है जीवों के द्वारा अपेक्षा करते हैं कि हमारे पास आए, चाहे देने के लिए चाहे मांगने के लिए। यदि कोई भगवान से मांगने जाता है तो उससे भी भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। वे गीता में अपने मुख से कहते हैं कि चतुर्विधा भजन्ते माम जनः सुकृतनोर्जुना आर्तो जिज्ञासुरार्थार्थी ज्ञानी च भर्तृसभा। और बाद में कहते हैं उदारः सर्वैव एते ज्ञानी तत्पय में मतम, ये सभी उदार है, उदार है, उदार उसको कहते हैं जो देता है, ये सभी उदार है, उदारा सर्व एव एते। तो ये प्रश्न किया जा सकता है कि आर्त और अर्थार्थी क्या उदार है, वो तो आपसे मांगता है। और भगवान कहते हैं सभी उदार है, आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी और ज्ञानी चारों महा उदार है। तो भगवान इसलिए उदार कह रहे हैं, कोई अर्थार्थी धन का इच्छुक भगवान के पास आता है और भगवान जब उसकी इच्छा पूरी कर देते हैं तो इसके द्वारा भगवान का यश फैलता है। तो भगवान अपने भक्तों को इतना धन देते हैं, जैसे ध्रुव महाराज, तो भगवान को भी यश दिया इस याचक ने, इसलिए कहते हैं कि महा उदार उदार है। या गजेंद्र पर संकट पड़ा, वो आर्थ थे, द्रौपदी आर्थ थी, भगवान ने द्रौपदी का वस्त्र बढ़ाया, गजेंद्र जी की विपत्ति दूर किया, इसके द्वारा भगवान का यश फैलता है संसार में। भगवान आर्थ का दुख हरण करते हैं, इसलिए अपने दुखी भक्तों को अर्थार्थी भक्तों को उदार कह रहे, उदारा सर्वे। तो भगवान के पास कोई आकर के मांगे तब भी उदार है और दे तब तो उदार है ही। भगवान के पास किसी भी तरह से आना चाहिए, मांगने के लिए चाहे देने के लिए। तो एक बार प्रभुपाद जी से प्रश्न किया गया कि प्रभुपाद जी, कुछ लोग कहते हैं कि भगवान सब तरह से परिपूर्ण है, तो फिर भगवान इतने बड़े होकर के मांगते क्यों हैं? गीता में कहते हैं जो खाते हो दो, जो करते हो मेरे लिए करो, जो दुख सहते हो मेरे लिए सहो, ये दो वो दो, हमको एक पत्ता भी दोगे तो मैं खा लेता हूं। तो इस प्रकार अपनी भूख भगवान प्रकट कर रहे हैं, अपनी दीनता प्रकट कर रहे हैं। ऐसा कोई है राष्ट्रपति या प्राइम मिनिस्टर जो कहे कि हमको कोई पत्ता भी देगा तो हम ले लेंगे प्रेम से? न, पत्ता नहीं चाहिए, वो दूसरा पत्ता चाहिए, डॉलर चाहिए लोगों को। ये भगवान एक तुलसी के पत्ते से ही प्रसन्न हो जाते हैं, क्यों ऐसा कह रहे हैं? इस पर प्रभुपाद जी कहते हैं, भगवान जानते हैं कि कुछ लोग इतने अभिमान में रहते हैं कि वे मांगने नहीं आएंगे, वे सोचते हैं कि हम बड़े हैं, हम धनी हैं, हम क्यों मांगे भगवान। इसीलिए भगवान उनसे मांगते हैं कि ठीक है तो तुम देने के लिए आओ भाई। अभिमान में वो मांगेगा नहीं तो अभिमान में दे सकता है ना, तो सोचेगा अच्छा ईश्वर बोल रहा है, ईश्वर भगवान मांग रहा है तो ठीक है, दे दो उसको, हमारा जस हो, हमारा नाम हो। कुछ लोग हैं ऐसे संसार में जो सबसे मांगते नहीं चलते, वो भगवान से भी नहीं मांगते, अभिमान में रहते हैं पर देते हैं। आप उनको कहिए कि कल कल मंदिर में आया करो, भगवान का दर्शन करो, उनसे कुछ प्रार्थना, तो कहे मंदिर में हमें आने का फुर्सत नहीं है, चेक देता हूं ले जाओ। ठीक है, तो किसी भी तरह से कृष्ण से संपर्क जोड़ो, तो मंदिर में आने की फुर्सत नहीं है भगवान का दर्शन करने की, लेकिन दान दे लाख लाख डॉलर तो दे। कहते हैं कि आप हमारी ओर से जय बोल दीजिएगा, हमें आने की फुर्सत नहीं है। तो हम लोग भी कहते ठीक, कोई बात नहीं, संपर्क जुड़ा इस तरह से भगवान से देने का। और कभी कभी आदमी पैसा देता है जहां, तो वहां आकर के देखता है कि क्या हुआ है, तो उस नाते से भगवान का दर्शन हो जाता है। किसी भी तरह से भगवान चाहते हैं संपर्क। तो यहां आज की लीला में जो मथुरा के राजपथ पर घटना हो गई है, तो इस पर विचारक या भक्तजन बहुत तरह से अर्थ कर सकते हैं, भाई भगवान की इस लीला के पीछे आशय क्या है? आशय यही है कि भगवान की सेवा करनी चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए, उसी में कल्याण है। भगवान के विरुद्ध बोलना, भगवान से प्रेम न करना, उल्टा व्यवहार करना, आदमी के तत्कालिक जीवन का भी नाशक होता है, परलोक में भी असंगति होती है। इसलिए मनुष्य को अपने जीवन में भगवान को स्वीकार करना चाहिए। जो लोग जी रहे हैं, खा रहे हैं, लेकिन भगवान को अपने जीवन में स्वीकार करके जी रहे हैं, उनका जीवन अन्य लोगों से बिल्कुल दूसरा है। जैसे मान लीजिए वस्त्र पहने हैं, तो एक आदमी विवाह के अवसर पर वस्त्र पहनता है या ऐसे पहनता है, और वही वस्त्र यदि किसी मुर्दे पर लपेट दिया जाए तो कफन माना जाता है। वस्त्र तो वो भी है, लेकिन उस पर आदमी देखना तक नहीं चाहता है। और कोई कह दे कि ये पहले कफन था, इसका आप गमछा बना लीजिए व्यक्ति तो मर जाएगा गरीब बाप के बाप, ये वह नहीं धारण कर सकता। तो भगवान के भक्ति के बिना जो जीवन है वो मरा हुआ जीवन है। जीने खाने से क्या होगा, सांस भले चल रही है लेकिन भागवत में कहा गया है कि वो मरा हुआ व्यक्ति सांस ले रहा है। यदि मरा हुआ व्यक्ति सांस लेने लगे तो और भयानक बात है। कोई मुर्दा ले जा रहा है, मुर्दा बीच में सांस लेने लगे तो लोग पटक कर भाग जाएंगे कि भूत हो गया, ये क्या हो गया। तो वास्तव में भगवान की भक्ति के बिना सब भूत जी रहे हैं, कार में घूम रहे हैं, विमान में घूम रहे हैं, सब भूत सिगरेट पी रहे हैं, कई तरह से भयावह जगत है वास्तव में। ये तो कहीं कहीं लोग जीवित हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। तो भगवान को अपने जीवन में समझना, उनको यथाशक्ति वस्तु अर्पित करना, प्रेम करना, यही जीवन है। अन्यथा भगवान का आशीर्वाद नहीं मिलता उस व्यक्ति को। भगवान की बनाई हुई दुनिया में आदमी रह रहा है तो भगवान का आशीर्वाद मिलना चाहिए उसे, भगवान को समझ करके जीना चाहिए, प्रेम करके। इस घटना से शिक्षा मिले, और नहीं तो केवल विफलता ही विफलता। तो भगवान रास्ते में चल रहे, हमको क्या जरूरत है वस्त्र मांगने की और सब करने की। लेकिन भगवान ने सोचा कि कुछ सिद्धांत प्रकाशित करके चलना चाहिए, तो वस्त्रों को लेकर भगवान आगे बढ़े। अब आगे ततस्तु बायक प्रीतस्तोर्देशम कल्पयत। तो भगवान चलते चलते वस्त्र लेकर के एक दर्जी के पास गए, वायक के पास। जहां भगवान खड़े होते थे तो सैकड़ों अपने सखा थे, ग्वाल बाल थे, और लोग भी अपार तेज को सुंदरता को देखने के लिए जुट गए। उधर दूर पर स्त्रियां महलों से देख रही थी, छत से सब लोग देखते रहते कहां गए हैं कृष्ण, इस दुकान में गए हैं, उधर जा रहे हैं। और कोई कोई आते थे, कोई फल वाले आते थे, फल अपने आप बिना मांगे दे रहे थे, भगवान लेकर के अपने सखाओं को रखने के लिए देते थे। कभी कहते थे नहीं अब हो गया, इसमें थोड़ा फल लेते थे। कोई कुछ दे रहा है, कोई अलंकार दे रहा था, बड़े बड़े सोनी सेठ लोग आकर के उनको सोना का गहना पहना रहे थे, भगवान उसको स्वीकार कर रहे थे। यदि सब तरह से परिपूर्ण है लेकिन भगवान स्वीकार कर रहे थे, भेंट की सामग्री दे रहे थे। वस्त्र बहुत जरूरी है देश काल के अनुसार पहनना। तो भगवान दर्जी के पास गए तो देखा, देख करके खड़ा हो गया, प्रणाम किया और बहुत प्रसन्न हो गया। प्रीत, भगवान ने कहा कि हमें इस प्रकार का, इस कटिंग का ड्रेस चाहिए, ऐसा चाहिए चाहिए, हमको ऐसा सजा दो बना दो। तो फर्स्ट क्लास का दर्जी था, बहुत जल्दी ही उसने बनाया। उसके और भी लोग थे, अकेले नहीं था वो, मास्टर था और दर्जियों का। सबको बताया, सभी ग्वाल बालों का और कृष्ण बलराम का, सबका डिजाइन बना बना करके काट करके फिट कर दिया। यहाँ तक कि वस्त्र का ही मुकुट बना दिया, बेल बूटा सजा दिया, जैसे लखनऊ में लोग पहनते हैं ज्यादा कपड़ा वैसे जारी किया हुआ, सब फिट कर दिया। विचित्र वेश बनाया, विचित्र वर्ण चय ले गई, भिन्न भिन्न प्रकार के कपड़े से बनाया। जैसे मान लीजिए भगवान का कुर्ता बनाया, कोट बनाया, तो भिन्न भिन्न कपड़े का उसमें जोड़ जोड़ कर कई रंग का चय ले, और मुकुट बनाया वस्त्र से, कंकड़ बनाया, कई तरह से सजा दिया, पगड़ी बांधा। दोनों बहुत अच्छे लग रहे थे कृष्ण बलराम। एक तो ऐसे ही अपार तेज है। एक भक्त हमसे पूछा, एक बार कथा कह रहा था खटिया में, तो पूछा कि भगवान जो वस्त्र पहन कर गए थे वो वस्त्र क्या किए ब्रज से। हमने कहा किसी सखा को दे दिए होंगे झोला में रखने के लिए। मथुरा और दूसरा वस्त्र पहन लिए। इस तरह से दोनों को सजाया दर्जी ने। नाना लक्षण भेषा ध्यान कृष्ण राम विरज स्वयं कृत बाल गजौ पर बणी व सीते तरव। तो जैसे एक काला हाथी और एक उजला हाथी का बच्चा, बाल गजब शोभित होने लगे, उनको सजाया जाए गहनों से वस्त्र से और वो सुंदर लगे, उस तरह से कृष्ण बलराम शोभित होने लगे। आप लोगों ने देखा होगा हाथी का बच्चा बहुत सुंदर लगता है। हाथी तो बड़े हो जाते हैं तो ज्यादातर खाने को नहीं मिलता है तो उतने अच्छे नहीं लगते हैं, लेकिन हाथी के बच्चे बहुत सुंदर लगते हैं। तो कोई गौर वर्ण का हाथी हो और कोई काला हो, उनको विविध विविध वस्त्रों से सजाया जाए तो जितना भी अच्छा लगते हैं उस तरह से कृष्ण बलराम विरेज शोभित होने लगे। अब तक इतना वस्त्र ब्रज में नहीं पहने थे, विभिन्न प्रकार के चाहे इतना कीमती नहीं पहने थे। गांव के लड़के गरीब गाय गौएं चराते हैं, वस्त्र पहनने की फुर्सत है, सवेरे तो भोजन करने की फुर्सत नहीं होती थी, अपना कलेव अपना जलपान टांग करके ले जाते थे, ब्रेकफास्ट बन करते थे। जो भी भगवान की यह लीला है, इस समृद्ध नगर में प्रवेश करते ही भगवान का वस्त्र और देश सब बदल गया, बहुत सुंदर लग रहा। अब देखिए यहाँ ठीक रजक से तुलना कीजिए, तस्य प्रसन्नो भगवान, उस पर भगवान प्रसन्न। यद्यपि भगवान उसको सिलाई दे रहे थे, कुछ भक्तों का कहना है कि भगवान जब मथुरा गए थे तो ब्रज से कुछ सोने के सिक्का लेकर गए थे, मार्केटिंग करना है बाजार करना है तो कुछ दे करके करेंगे, ऐसे क्यों करेंगे, तो दर्जी को देने लगे कि आप अपना चार्ज ले लीजिए सिलाई ये सब। वो हाथ जोड़ लिया, चरण में गिर लिया, कहने लगा कि मैं कुछ भी नहीं लूंगा, मैं मेरा सबसे बड़ा पुरस्कार यह है कि आप और भी समय में जो मथुरा में रहिएगा तो आकर हमारे पास कपड़ा सिलाइए, यही हमारा दान। तो भगवान उस पर बहुत प्रसन्न हुए। तस्य प्रसन्नो भगवान प्रागत सारूप्य आत्मना, अगले जन्म के लिए भगवान ने उसको सारूप्य दे दिया कि तुम्हें चतुर्भुज रूप की प्राप्ति होगी और तुम हमारे धाम में रहे, पार्षद बना लिया, एक तो वो दान हुआ। लेकिन कुछ नास्तिक लोग या अविश्वासी लोग कहेंगे कि अरे आगे का क्या पता है, दिया नहीं दिया आगे का, वर्तमान में क्या दिया तो वर्तमान का ज्यादा महत्व देते हैं। इस पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, श्रियम च परमाम लोके बलैश्वर्य स्मृतिन्द्रियम, लोके इस जीवन में भगवान ने परमाम श्रियम दिया। परमाम श्रियम का अर्थ परम धन, श्रेष्ठ कोटि का धन, मात्रा में और गुण में ऐसा धन दिया जितना धन और किसी के पास नहीं। दर्जी को भगवान ने धन दिया, भगवान को देने वाले को वास्तव में धन की प्राप्ति देखी गई है संसार में। एक व्यक्ति हमसे सुना रहे थे अभिषेक शीत में, मैंने कोई व्यक्ति उनसे कह दिया, निवार रथ यात्रा में हम लोग थे और आए हुए थे, तो किसी ने कहा कि भगवान आपकी इच्छा के अनुसार आपको धन दिए हैं, तो वो कहते हैं मेरे सामने ही थे, वो कहते हैं इच्छा के अनुसार हमने जितना सोचा नहीं था उससे कई गुना भगवान दिया। वो कहते हैं इच्छा के अनुसार ही नहीं दिया, मैं उतना इच्छा भी नहीं कर सकता था जितना दिए। इस तरह से भगवान देते हैं। तो मैं पूछा, मैं कहा कि कैसे धन हुआ, तो कहा भगवान को देने से हुआ, भगवान को मैंने अर्पित किया वे दिए। एक बार की घटना एक भक्त सुनाए थे केनिया में, वो लंदन में रहते थे, तो अपने वाइट फोर्ट मंदिर में भक्तिवेदांत मेदर में वे आए थे, जन्माष्टमी का दिन था और कुछ लोग बोल रहे थे कि भगवान के लिए हम ये दान दे रहे हैं ये दान दे रहे हैं, तब तक उनकी बारी आई तो उनके पास कुछ भी नहीं था इस समय। वो सुना रहे थे कि मेरे पास कुछ भी नहीं था देने के लिए, लेकिन हमारे मन में भी उत्साह आया तो मैं 500 पाउंड का संकल्प किया, भगवान को दे रहे। बाद में जाकर के मैं मुश्किल से उस दान को पूरा किया। तो बता रहे थे कि उसके बाद हमारी घर में धन की ऐसी वृद्धि हुई। तो मैं कहा कि कितना उससे बढ़ा, तो उन्होंने कहा कि हजारों हजारों गुना मेरा व्यापार बढ़ गया उस दिन से। ये बिल्कुल सत्य घटना है। उनका नाम भी मैं बोल सकता हूं राजन जानी नाम है। भगवान को देने का ये प्रभाव हुआ। उसना रहे उस दिन वो कह रहे थे, उसके पहले हम बड़े चिंता में रहते थे, लेकिन भगवान ने देखा कि अपनी शक्ति भर दिया, तो कई गुना दिया भगवान ने। इस प्रकार लोग अनुभव सुनाते हैं। तो भगवान की सेवा किया, उस दर्जी ने सिया भगवान के कपड़े को, तो उसे अपार धन मिला। श्रीयम परमान श्रीयम, बल और शारीरिक बल, ऐश्वर्य, ऐश्वर्य का अर्थ पद, ऊंचा पद और स्मृति शक्ति तथा इंद्रियों की पटुता, मतलब दीर्घाय। उसकी इंद्रियां बहुत दिन तक, जब तक शरीर रहेगा तब तक आंख खराब नहीं होगी, काम करेगा, हाथ काम करेगा, इसको इंद्रियम का सब दिया। यह आशीर्वाद प्राप्त होता है। हमसे कभी कभी लोग पूछते हैं, किसी के घर में कोई बहुत बड़ा रोगी व्यक्ति होता है, कहते महाराज आशीर्वाद दीजिए, ये ठीक हो जाए। हम यही कहते हैं कि आप भगवान को प्रणाम किया कीजिए, रोज मंदिर में या अपने घर में भी भगवान को बार बार प्रणाम कीजिए, यह असाध्य रोग भी चला जाएगा निश्चित। हम यही बताते हैं, या और कभी कभी बताते हैं कि नारायण कवच का पाठ कीजिए, भगवान की शरण लीजिए, भगवान का नाम लीजिए। तो देखिए भगवान की सेवा का प्रभाव, कि अपार धन बल ऐश्वर्य और स्मृति शक्ति तथा इंद्रियों की पटुता सब प्राप्त हुई। तो क्या चाहिए लोग में इससे ज्यादा। तो भगवान ने उस दर्जी को इस प्रकार का वर दिया, सुदान दिया। इसके बाद वे चले आगे बढ़े। ततः सुदान भवनम मालाकारस्य जगमतुः। इसके बाद भगवान मालाकार सुदाम के घर गए। सुदामा नाम का रहता था मालाकार, माली, उसका नाम सुदाम था। दाम का अर्थ है माला और सु का अर्थ है अच्छा। वो इतना सुंदर माला बनाता था कि उसका नाम ही हो गया सुदाम। ऐसे जन्म से वंश परंपरा से ही माली माला बनाते रहते हैं, पुष्प उगाते हैं बगीचे में और माला बनाते हैं, गुटते हैं, उनकी बनाई हुई मालाएं भगवान को या किसी को अर्पित होती रहती है। तो बहुत सुंदर माला मथुरा में बनाता था। तो भगवान देखे होंगे, चाहे एडवर्टाइज कुछ पढ़े होंगे जहां तहां, या घर के बाहर माला टंगी होगी, फूल माला दिखती ही रहती। तो भगवान देख वस्त्र हो ही गए थे और माला चाहिए, शहर के लायक नगर के लायक माला पहनने के लिए चले। या वृंदावन में रहते हैं तो भगवान को माला पहनने का बहुत शौक है, इसलिए उनको बनमाली कहते हैं, फूल की माला पहन कर। भगवान रत्न की माला पहनकर सुखी नहीं होते, वो तो ये कहीं धारण किए हैं कौस्तुभ मणि, उससे सारा मनोरथ पूरा हो जाता, लेकिन बनमाला पसंद करते हैं, फूल की माला। तो मालाकार सुदाम के घर में दोनों भाई गए। दोनों भाई घर में गए और जो गोप थे सब बाहर खड़े हो गए। तब तक सुदाम ने देखा दोनों भाइयों को अपने दुकान में आते हुए। दुकान और घर दोनों एक ही था, ऐसा नहीं था कि रेजिडेंस उसका दूसरी जगह था और शॉप है दूसरी जगह, घर उसके पीछे ही था और सामने दुकान। दोनों भाइयों को देखते ही वो खड़ा हो गया और दौड़ करके घर से आया। तौ दृष्टवा स समुत्थाया ननान सिरसा हुई। दोनों भाइयों को देख करके वह मालाकार खड़ा हो गया, आया भगवानी किया, आ करके भूमि ननाम पृथ्वी पर अपना मस्तक रख करके प्रणाम किया, साष्टांग प्रणाम किया, ननान लौट गया चरणों में कृष्ण बलराम प्रणाम किया। इसको भक्ति कहते हैं। उसी मथुरा में रजक भी रहता है जो भगवान के हाथ से मारा गया और वस्त्र तक नहीं दिया, सुंदर वचन नहीं दिया, वस्त्र देने की बात किया। वचने का दरिद्र होता है, यदि किसी के पास कोई वस्तु नहीं है तो कम से कम सुंदर वचन बोलना चाहिए। आप आए हमारे घर पर, बहुत अच्छा हुआ, आपका स्वागत है। वचन से क्या दरिद्र, कुछ ऐसे वचन दरिद्र भी लोग होते हैं। कोई उनके घर जाए तो और उल्टे गाली सुना देंगे, हमें पसंद नहीं है तुम आए ऐसे। इस तरह से बोलते हैं। जैसे कोई मान लीजिए भीख मांगने वाला भिक्षुक गया किसी के दरवाजे पर, तो कभी कभी कह देते हैं जाओ आगे बढ़ो। अरे आगे बढ़े कहो तो आगे तो जाएगा ही, तुम्हारे घर दखल थोड़े करने आया, लेकिन ऊपर से कुछ न कुछ वचन बाण चला, जाओ आगे जाओ। सब कभी नहीं बोलना चाहिए वास्तव में। पता नहीं किस देश में भगवान आकर के मांग रहे है ना, और धोबी नहीं पहचाना। कभी तिरस्कार नहीं करना चाहिए भीख मांगने वाला का। कुछ लोगों के मन में ऐसी भावना है कि अरे ये सब दुख भोग रहे हैं, अपने कर्मों के अनुसार हम कहां तक दुख दूर कर पाएंगे। तो तुम्हारे घर में भी कोई ऐसे बीमार हो, लूला लंगड़ा हो, तो कह दे भोग रहा है, इसको हमको क्या देना है, ऐसा कह सकता है आदमी। हमें हमेशा ब्राइट साइड लेना चाहिए, हमें सहारा देना ही है दीनहीन को, गरीब को, यही मनुष्यता है वास्तव में। तो किसी को हम कुछ दे नहीं पाए, नहीं स्वागत कर पाए, तो वचन से स्वागत करें। अब वचन से भी नहीं स्वागत किए तो कम से कम मुख तो रह जाओ, चुपचाप रह, ये बीस तो नहीं उगलना चाहिए। कोई आए हमारे घर पर, हम ले जाकर तेजाब एसिड डाल दिए उस पर, ये वचन तो उससे भी ज्यादा खराब है। इस तरह से बोलते तो सुदामा माली आया और प्रणाम किया। तयोरा सन्मानीय पाद्यम साधारण आदि पूजा सामग्रयोश्चक्रे श्रद्धांजलि लेखन। और इसके बाद सारे गोप सखाओं को बुलाया, भगवान को ला करके अपने घर के विशाल आंगन में बैठाया, आसन लाया। ऐसा नहीं कि भगवान के लिए कोई स्पेशल आसन था, अपने घर में जो आसन था वो लाया और भगवान उसको बैठ गए। आसन था मतलब पलंग होगा चाहे कुर्सी टेबल जो भी, लाया उसको बिछाया, कपड़ा शुद्ध साफ, और घर में चारों तरफ फूल ही फूल था, सुगंध ही सुगंध थे। तो भगवान आकर बैठ, और भगवान के जितने भी सखा थे उनके लिए भी फर्श पर दरी आदि बिछाया गया होगा जो भी, वहां बैठे सब। और कृष्ण बलराम एक आसन पर बैठे, सबकी पूजा किया। वहां पूजा का ये अर्थ है, सबसे पहले जल लाया, पाद्य कहते हैं उसको, पाद्य कार्य होता है चरण धोने के लिए जल। अपने हाथ से कृष्ण और बलराम के चरण कमल को धोया। किसी के घर पर कोई जाए, विशेष करके ब्राह्मण, तो उसका धर्म हो, साधु और वैष्णव, तो उसका धर्म होता है कि वह चरण धोए, चरण पखारे। लेकिन यह तब बात होती थी कि भाई कोई रास्ता चलकर थका मंदा आया है तो उसका चरण धोना चाहिए। यह सिद्धांत था, लेकिन उस सिद्धांत की रक्षा अभी भी भारतीय लोग करते हैं। कोई कार से भी गया है तो फिर भी चरण धोते हैं, देखे है ना, एक परंपरा चली आ रही है। तो थका मंदा नहीं है लेकिन फिर भी चरण धोने की परंपरा, चरण धोना चाहिए। कभी कभी इधर के लोग इस बात को नहीं समझ पाते हैं कि क्या जरूरत है। एक बार एक व्यक्ति का चरण धो दिया ठंडा पानी से एक घर में, एक साधु का चरण धो दिया। तो साधु कहता है हमारी ये बहुत बड़ी तपस्या है कि हमारा चरण ठंडे जल से धो दिया गया, ऐसा सुन रहे थे। मेरा जीवन बड़ा अस्थिर है, ठंडा पानी से मेरा शरण तो गर्म पानी से धोना चाहिए, जैसा मौसम हो उसके अनुसार। ये नहीं कि इंडिया जाए और मई जून में गर्म पानी से शरण धो, जाड़ा में गर्म पानी चाहिए। जो भी है, कृष्ण बलराम का चरण कमल धोया, तयोरासन मानिया, पाद्यम साधारणा भी पूजा किया, कई तरह से सभी को कृष्ण बलराम को स्पेशल उनका स्वागत किया। ऐसे माला पहनाया, माला की बात बाद में आएगी, तांबूल अनुलेपन, सभी गोप ग्वालों को तांबूल लाया, वंश परंपरा से तांबूल सेवा उसका काम था। तांबूल मैंने पान, पान लाया, सब लोग पान खाने लगे, अनुलेपन, फिर चंदन से तिलक किया सबको, चंदन तांबूल और श्रक माला पहनाया सब, जो भी माला था सबसे अच्छा अच्छा सबको दिया, काफी मालाएं थी इसलिए कोई दिक्कत नहीं हुई स्वागत में। काफी मालाएं, कभी कभी तो हम लोग देखते हैं, कहीं हम लोग जाते हैं किसी गृहस्थ के यहाँ, यहाँ तक समृद्ध गृहस्थ के यहाँ, तो मान लीजिए वे आठ माला मंगाए हैं और वैष्णव चले गए बाहर, तो चार ऐसे ही आ जाते हैं, आठ को माला मिली और चार ऐसे ही आ जाते हैं। लेकिन वहां पर भगवान का कोई ऐसा पार्षद नहीं था जिसको माला न मिली। तो कदाचित मान लीजिए कहीं कोई जा रहा है और मालाएं नहीं है सबके लिए, तो फूल भी अर्पण कर देना चाहिए जो बाकी रह जाए, तो वो भी स्वागत हो जाता है। तो सुदाम ने स्वागत किया भगवान का, सबको दिया, चरण धोया, चरण जल घर में छिड़का, अपने संबंधियों को दिया और कहता है, ये तो काया से पूजा है भगवान ने, भगवान दैविक साक्षात बैठे हैं घर में और उसके बच्चे, उस माली के बच्चे और उसकी स्त्री सब आए, सब भगवान के चरण में लौट रहे हैं, गोप सखाओं के चरण में प्रणाम कर रहे हैं। ऐसी गृहस्थी वास्तव में धन्य है जिस घर में भगवान साक्षात आ जाते हैं। तो भगवान के भक्त साधु जिस घर में जाते हैं वो गृह धन्य हो जाता है, फिर तो भगवान जिस घर में गए हैं और वो भी साधुओं के साथ, अपने गोप सखाओं के साथ गए, तो क्यों नहीं वो घर धन्य हो जाएगा। तो सुदामा कहता है, प्राह्नः सार्थकं जन्म पावितं च कुलं प्रभो, हे प्रभो हमारा जन्म सार्थक हो गया, जन्म जिस फल के लिए देते हैं ब्रह्मा जी वो फल मिल गया, आप हमारे घर आए, आप हमको प्राप्त हुए, आपकी सेवा का मुझे अवसर मिला, तो मेरा यह शरीर सफल हो गया, मेरा जन्म लेना सार्थक हो गया। जन्म की सफलता भगवान की भक्ति में है, धन प्राप्ति, पद प्राप्ति, मान प्राप्ति या बहुत दिन जी जाना, ये सब जन्म लेने का फल नहीं है। जन्म लेने का फल है भगवान से प्रेम बढ़ाना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम। अब सार्थकम जन्म, प्राह न सार्थकम जन्म, न मैंने हमारा, हम सबका जन्म सार्थक हो गया, और पावितम च कुलम प्रभो, हे प्रभो हमारा कुल पवित्र हो गया, पवित्र हो गए सारे पाप का, वंश परंपरा से कोई भी गलती हुई होगी हमारे पूर्वजों द्वारा तो आज सब पाप धुल गए, सब पवित्र हो गए। आपके गृह पितृदेवस्य मह्यं तुष्टा ह्य आगमनेन वा, हमारे पितर ऋषि और देवता सब तृप्त हो गए। किसी भी मनुष्य पर देवताओं का, ऋषियों का और पितरों का बहुत बड़ा ऋण रहता है, वह ऋण कैसे उतरता है जब उनकी सेवा की जाए, और सबसे अधिक विधि है ऋण उतारने की, वो है भगवान की सेवा करना, भगवान की भक्ति करना। पितरों का क्या ऋण है हम पर, पितरों का ऋण है वंश परंपरा से उन्होंने संतान दिया है। जैसे मान लीजिए हमारे पिताजी, हमारे पिताजी के पिताजी, उनके पिताजी, तो इस तरह से हमको जो देह मिलता है वह पितरों की कृपा होती है। वे आशा में रहते हैं कि हमारा पुत्र, हमारा परिवार का व्यक्ति शुभ कर्म करेगा, सत्य का पालन करेगा, धर्म करेगा, भगवान की भक्ति करेगा, तो हमारा भी उद्धार हो जाएगा। जैसे भगीरथ जी ने अपने पितरों का उद्धार किया गंगा जी को लाकर, इसी प्रकार प्रत्येक पितर अपेक्षा रखते हैं अपने पुत्र से। लेकिन अगर पुत्र इधर बीड़ी पीने लगे, सिगरेट पीने लगे, तो उनकी अवगति होती है। या और भी आदत हो जाए क्लब में जाने की, ये करने की, संडे को क्लब में न आकर के, अरे मंदिर में न आकर कहीं क्लब में जाए इधर उधर, तो पितर तो और भी घोर नरक में ट्रांसफर किए जाते हैं। कम दुखद नरक में होंगे, उनको बेसी ज्यादा दुख काले नरक में डाला जाता है। बर्गर खाने लगे, मांस खाने लगे, शराब पीने लगे, जुआड़ी हो जाए तो गिराते। जिस वंश में भगवान के भक्त उत्पन्न होते हैं, भगवान का भजन करते हैं, शुभ आचरण करते हैं, तो जो पीतर नरक में गिरे होते हैं वे भी उद्धार उद्धृत हो जाते हैं, उनका उद्धार हो जाता है, वो स्वर्ग में भेजे जाते हैं। और इसी तरह से ऋषियों का ऋण है हम पर। हम जो पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं वेद शास्त्र, इसको हमारे आचार्यों ने, ऋषियों ने परंपरा से दिया है हमको। यदि मान लीजिए हम जन्म लिए और हमारे सामने भागवत नहीं रहता, गीता नहीं रहती, महाभारत, उपनिषद, हम अपने से क्या भगवान को समझेंगे? तो भगवान को समझने में और जीवन में अन्य पुरुषार्थों को प्राप्त करने में भी ऋषियों का बहुत बड़ा सहयोग है हमारे से। तो जब हम वेद शास्त्र पढ़ते हैं, सुनते हैं, व्याख्या करते हैं, तब हम ऋषि ऋण से मुक्त हो जाते हैं। और इसके बाद देवताओं का ऋण है। देवता हमें प्रकाश देते हैं, पानी देते हैं, सब कुछ देते हैं। तो जब हम देवताओं को ये चीज लौटाते हैं और खास करके भगवान की पूजा करते हैं वस्तुओं से, तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं और देवता सब तृप्त हो जाते हैं। तो जिसके घर में साक्षात भगवान आए हैं, तो क्यों नहीं उसके द्वारा सारे देवता, पितर, ऋषि सब तृप्त हो गए। ही आगमनेन वाल, आप दोनों हमारे घर में आए, आपके आगमन मात्र से हमारे पितर तृप्त हो गए, तर गए। आपने सुना होगा पितरों के विषय में जब बात की जाती है तो तृप्ति की बात की जाती है। अश्विन के महीने में पितृपक्ष आता है, तो उसमें हमने देखा है गंगा जी में खड़े होकर के लोग कहते तृप्तान, तृप्तान, जल देते तृप्तान। तो पितर अतृप्त रहते हैं, दुख में रहते हैं। जो उनके वंश में कोई व्यक्ति बहुत अच्छा कर्म करता है, अर्थात भगवान की भक्ति करता है, तो उसको तृप्त हो जाते हैं, सुखी हो जाते हैं, उनका एलिवेशन होता है। तो मेरे पितर तृप्त हो गए, देवता संतुष्ट हो गए, ऋषि संतुष्ट हो गए, भवंतो किल विश्वस्य जगतः कारणं परम। तो भगवान ने कहा कि क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं? हम तो गोप हैं, वृंदावन में रहते हैं, घूमते घामते आ गए, तो हमारी सेवा से, हमारे आगमन से आपके पितर आदि तृप्त हो गए, कैसे होगा? तो वो कहता है नहीं, आप गोप नहीं है, आप जादव नहीं है। भवंतों के विश्व से जगत कारण करम, आप ही दोनों विश्व के और जगत के कारण हैं। विश्व का अर्थ है संपूर्ण आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, जिसको विश्व कहते हैं, जैसे नदी, पहाड़, सब विश्व है। और जगत का अर्थ होता है जीव। इस विश्व में हम देखते हैं बहुत से स्थान हैं, पर्वत, नदी, समुद्र और बहुत से जीव हैं। तो जीवों के और विश्व की समस्त वस्तुओं के कारण आप दोनों हैं, मतलब आप ईश्वर हैं, आपने विश्व को उत्पन्न किया। वो पहचान गया प्रभु को, भगवान को पहचान गया। भवंतो किल विश्व से जगत कारणं परम, इस विश्व के और समस्त जीवों के कारण आप है। यह एक बहुत ही सुंदर विषय है। प्रत्येक व्यक्ति को ऐसा विचार करना चाहिए कि वास्तव में इन जीवों को कौन पैदा किया या इस विश्व को कौन बनाया, पृथ्वी कौन बनाया, जल वायु अग्नि इनका निर्माता कौन, हम लोगों में से तो कोई नहीं है ना, क्योंकि हम लोग तो खाली हाथ आते हैं, एक ग्राम मिट्टी लेकर नहीं आए होंगे, और आते हैं तो कहते हैं ये लैंड मेरा है, प्रॉपर्टी मेरी है, प्रॉपर्टी डीलर हो जाती है ना, जबकि कुछ नहीं लेकर आए थे, न ही कंप्यूटर लेकर आए थे, न लंगोटा न लोटा, कुछ नहीं लेकर आए, कुछ लेकर आए थे क्या? आप तो कह सकते नहीं हमारे बाप की संपत्ति है, हमारे पिताजी ने घर बना कब दिया था या दिया था, तो पिताजी से पूछिए वे लेकर आए थे, तो कहे नहीं हमारे पिताजी ने दिया था। तो इस तरह से पितृ परंपरा को पीछे ढकेला जाए, पूछिए सबसे कि आप कुछ लेकर आए थे इस दुनिया में, तो नहीं हम लेकर नहीं आए थे, तो सभी तो यही कहेंगे, और अंत में आप ब्रह्मांड से पूछिए तो भी कहेंगे नहीं हम लेकर नहीं आए थे, ये तो भगवान ने बनाया था पंचभूत, तो उसी समय प्राणियों का शरीर रचा, तो ये सब भगवान ने दिया, ये बिल्कुल सत्य है, ऐसा नहीं कोई कल्पना है, कोई भाव है कि हाँ भाई भगवान सृष्टि किए हैं हम नहीं किए, और कोई अगर ज्यादा तार्किक हो तो कम से कम उसको तो इतना समझना ही पड़ेगा कि वो नहीं किया है, ये भले कह सकता है कि हमको पता नहीं है किसने बनाया है, लेकिन तुमको पता है ना कि तुम नहीं बनाए हो, ये भी पता नहीं है, इतना पता होना चाहिए तुम नहीं बनाए हो, तुम कुछ लेकर नहीं आए हो, कौन बनाया है इस विषय में भले तुम्हारा ज्ञान हो सकता है, तो उसका उत्तर शास्त्र दे, तो हम लोग वास्तव में कुछ लेकर के नहीं आए हैं, लेकिन यह विश्व इतना विशाल, इसमें सोना है, अभ्रक है, कोयला है, और इतना गैस, इतना तेल, इतनी अमेरिका में गाड़ियां चल रही है, ये सारे तेल भूमि से निकाले जा रहे हैं, भूमि में कौन सरकार डाली थी तेल, बताइए, यहां जो तेल की टंकी होती है वहां तो भूमि में कुछ डालते हैं कुछ लीटर तेल, लेकिन भगवान का तेल लाकर यहां डालते हैं और उसको बेचते हैं, इतना विशाल स्टॉक हो कि यदि सारे तेल को एक जगह जोड़ा जाए, सारे संसार के कल कारखाना में, गाड़ियों में, बस में, ट्रक में और ट्रेन में या कार में कितना खर्च होता है तेल एक दिन में, बहुत विशाल मात्रा हो जाएगी, है ना? ये कितना मिलियन गैलन हो जाएगा रोज का जोड़ा जाए तेल, और निकल ही रहा है, कंटिन्यूअस निकालना है वाह भगवान की सृष्टि, और निकालने वाले निकाल निकाल कर बेच रहे हैं, सप्लाई करने वाले इधर उधर बेच रहे हैं, लेकिन किसका है अगर वो आने वाला गर्दन पकड़ कर कहे क्यों किसका तेल है, तब क्या कहें, उसका कुछ बिल नहीं होता है, केवल सप्लाई करने वाले का बिल हो जाता है, कोई किसी के गोदाम से स्टोर से सामान चुरा चुरा करके बेच रहा है और मालिक आ जाए पकड़ ले तब क्या होगा, ये दशा मनुष्य उठा, इसको कहते हैं मनुष्य समाज